आज की बात।
श्रोता, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे भारत में दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या की। हालिया दिनों दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषण से बहुत परेशान रहे। स्थिति ये हो गई कि डॉक्टरों ने इसे मेडिकल इमरजेंसी का नाम दे दिया। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 30 गुना तक बढ़ गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने यहां तक कह दिया कि ये मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है।
PM10 इस वक्त में 999 क्रॉस कर रहा है और PM2.5 ऑलमोस्ट 900 क्रॉस कर रहा है और PM1.0 करीबन 377 क्रॉस कर रहा है। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। IMA declares दिल्ली इन ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी स्टेट।
दिल्ली के प्रतिष्ठित मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन का कहना है कि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है।
सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट देयर इज पार्टिकुलेट मैटर व्हिच गेट्स स्टक इन योर लंग्स, that if it's less than 1 micron, then it crosses the membrane of the lungs and then gets accumulated in the blood. So these are all very dangerous things. I mean, we may talk about alert, health emergency, but nobody understands the gravity of the problem because we continue like this. We as adults have less of an effect on us because we are at an age where we are not turning over our cells that rapidly, but the children are hugely exposed to nitric oxide, sulfur dioxide. All these gases are more detrimental to their neurological system. So when they breathe in, not only particulate matter which goes to the lungs, but also it permeates your bloodstream, goes to the brain.
इस स्थिति को देखते ही सबकी चिंता बढ़ गई। दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद करने की घोषणा के साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया,
स्कूल्स को एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली सरकार के और प्राइवेट सभी स्कूल्स को कि सभी आउटडोर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मॉर्निंग असेंबलीज बंद करा दें। किसी भी स्कूल में कोई भी मॉर्निंग असेंबली या आफ्टरनून शिफ्ट के स्कूल है उसमें आफ्टरनून असेंबली नहीं होगी। जो भी आउटडोर एक्टिविटीज है चाहे स्पोर्ट्स की है जो भी है नहीं होंगी। साथ साथ क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हाई रिस्क ग्रुप ज्यादा है तो प्राइमरी तक के सभी स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदूषण के मुद्दे के राजनीतिकरण से बचना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और सबका सहयोग जरूरी है।
भी केंद्र की भी उन सब लोगों को मिलके इसका समाधान निकालेंगे तभी इसका समाधान निकल सकता है। तो आज की जो हमारी चर्चा हुई मैं बहुत ही सार्थक और बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है और एक ये इंडिकेशन है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग सभी कदम जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो कदम हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। आज हम लोगों ने क्रॉप बर्निंग के ऊपर चर्चा की, व्हीकुलर पोल्यूशन के ऊपर चर्चा की, हम लोग जो बाईपास बन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की, CNG के व्हीकल्स कैसे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं उस पर चर्चा की। उन्होंने हमें सुझाव दिए, कुछ स्ट्रेचेज हैं जैसे दिल्ली गुड़गांव के एक ही रास्ता है तो अगर उसको द्वारका बाईपास को एक्सपीडाइट किया जा सके, बदरपुर आश्रम के स्ट्रेच को वो किया जा सके। उन्होंने हमें सुझाव दिए, हमने उनसे बातचीत की और मैं अब ये समझता हूँ कि ये एक तो ये मैसेज ये जाना चाहिए कि हम लोग टॉप के लेवल पे कोई भी कदम उठाने की अगर ज़रूरत है हम वो सभी कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये समस्या कई राज्यों की है और सबको मिलकर ही इसके लिए काम करना होगा।
और ये पिछले 2 वर्ष से ऐसा हो रहा है। अब ये कोई समस्या किसी एक प्रांत की नहीं है बल्कि कॉमन कंसर्न है। तो कॉमन कंसर्न के नाते हम अपने अपने प्रदेश में कुछ पग इसके लिए उठा रहे हैं, चाहे वो पराली जलाने का विषय हो, चाहे ट्रैफिक के पोल्यूशन की बात हो। ये सब बातें अपने अपने प्रदेश में तो कर ही रहे हैं लेकिन एक जॉइंट मीटिंग के बाद जो सुझाव एक दूसरे के देने की बात आई थी वो हमने बड़े कॉर्डियल एक एटमोसफियर के अंदर अपनी बातचीत की है। चाहे उसमें प्राली को उसका सदुपयोग करने के लिए कई प्रकार के इम्प्लीमेंट्स हमने यहाँ 8-9 प्रकार के इम्प्लीमेंट्स को किसानों को भी और सरकारी एजेंसियों को भी खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी है।
पर्यावरणविद सुनीता नारायण काफी आहत दिखी क्योंकि उनको ये लगता है कि समस्या की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता।
वी हैव अ सीवियर प्रॉब्लम एंड जस्ट लाइक इन 2000 व्हेन वी मूव टू सीएनजी यू मेड अ ट्रांजिशन व्हिच वाज बिग इनफ टू मेक अ डिफरेंस दैट्स द काइंड ऑफ एक्शन वी रिक्वायर बट टुडे दैट आई फाइंड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉइज आउटरेज ऑन एयर पोल्यूशन Every step that we try and take, there are vested interests that are fighting us tooth and nail. When it comes to diesel, when it comes to cars, it is said, oh, it's not such a big problem. When it comes to diesel generator sets, we banned it. Everybody wants to use a diesel generator set, saying that's not a big problem.
भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का भी कहना है कि समस्या के मूल कारणों के बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है।
कब तक दिल्ली बात बात में स्कूल बंद करती रहेगी? वो ये क्यों नहीं कहती कि शहर में डीजल कारों का पंजीकरण बंद हो जाए, कारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि रुक जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संस्कृति बढ़ जाए और कारें बंद हो? कब तक बड़ों के फैलाए इस प्रदूषण का समाधान हम बच्चों के स्कूल को बंद करके करते रहेंगे? हर उम्र के लोगों का फेफड़ा खराब हो रहा है। हमारे नेता भेजा खराब कर देने वाले लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक ही बात को जो साल भर से कह चुके हैं, बार बार घनघोर तरीके से कर रहे हैं, मगर उनमें हवा को लेकर कोई चिंता नहीं। एक दिन उठेंगे और लोगों को नैतिक शिक्षा भी दे डालेंगे कि आप बागवानी करें, पीपल का पेड़ लगाएं तो प्रदूषण रुक जाएगा। दरअसल समस्या के मूल तक कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां सबके हित फंस चुके हैं।
जी शंकर नारायणन वरिष्ठ वकील हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से संस्था का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन उसने 19 वर्षों में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नहीं किया है।
In 1998, the Supreme Court's Chief Justice at that time, Kirpal, who made this big move towards CNG, etc., had come out and said that he had pretty much given up on the government. He recorded it saying that the governments are asleep. As a consequence, he set up the Environment Protection Authority, EPCA, of which Ms. Narayan is the secretary. Over the last 19 years, on EPCA's watch, EPCA had been set up by the central government, a notification issue, lots of powers given to them, including SOMOTO taking action whenever they found that the air was being affected. This was a specific organization with the backing of the Supreme Court saying, carte blanche, go ahead, we'll take care of whatever you want. In 19 years since then, we have become the most polluted country in the world and possibly in the history of the world.
समस्या से निपटने के लिए एयर प्योरीफायर भी बाजार में खूब बिका, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कोई फायदा नहीं है। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यही मानना है।
अगर हम एयर प्योरीफायर का एविडेंस देखें तो एयर प्योरीफायर कितने इफेक्टिव हैं इस पे कोई डेटा नहीं है, इसलिए ज्यादातर जो लोग एयर प्योरीफायर लेते हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ही ले रहे हैं। कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है जिसमें ये दिखाया गया है कि एयर प्योरीफायर से सांस की तकलीफ या दमे वाले पेशेंट्स को दमा बेटर कंट्रोल में हो सकता है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के सीनियर रिसर्च एसोसिएट उस्मान नसीम का कहना है कि प्रदूषण की समस्या के कई कारण हैं और इसे निपटने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है।
जब तक ये हम लोग ये निश्चित नहीं कर सकते कि ये रूल्स, ये ऑर्डर्स, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हों या EPCA के हों या किसी अन्य एजेंसी के हों, अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उसका एनफोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ये स्थिति आगे जाने वाले टाइम पे और बुरी होगी। ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए इसको हटाने के लिए। ये बहुत सिंपल चीज है, बट हमारी विल बहुत जरूरी है, चाहे वो विल आप सिटीजंस की कह लें या हमारे एजेंसीज के कह लें।
प्रदूषण की समस्या के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जब ये गंभीर रूप धारण कर लेती है तब तो सब हरकत में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी गंभीरता कम होती है लोगों की गंभीरता भी कम हो जाती है और बात आई गई हो जाती है। हालांकि अगर आंकड़े देखे जाएं तो भारत वर्ष 2015 में प्रदूषण से हुई मौतों के मामले में 188 देशों की सूची में पांचवें स्थान पर रहा। ये मौतें वायु, जल और अन्य तरह के प्रदूषणों के कारण हुई। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लॉसेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में वर्ष 2015 में 32 लाख मौतें हुई हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आंकड़े में भारत भी शामिल है। दुनिया भर में हुई लगभग 90 लाख मौतों में से 28% मौतें अकेले भारत में हुई, यानी यह आंकड़ा 25 लाख से अधिक है। इस स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि समस्या को भुलाया न जाए बल्कि ठोस इलाज की कोशिश जारी रखी जाए।